ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಾಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪ್ರಾಯಕಾಚಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗಿರೀಸ್ ಈ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ವಿದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಾನ್ ತಿಲಾಪೃಷ್ಠ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀಧಾನ್ ಸತ್ಯಗು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಶ್ಯಾಮಚಾರ ಶಿಲ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಧಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮನ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜಯ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಹರಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಪಡೆಂಗೆ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸೆ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಔರ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 21 ಕಾಲೇನಾ ಬ್ರಜತಾ ಅಲ್ಪೇನಾ ಗೋಕುಲೆ ರಾಮಕೇಶವೌ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಸಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ರಿಂಗಮಾಣೌ ವಿಹಜ್ಜತೋ ಕಾಲೇನ ಬ್ರಜತ ಅಲ್ಪೇನ ಕಾಲೇನ ಬ್ರಜತ ಅಲ್ಪೇನ ಗೋಕುಲೆ ರಾಮಕೇಶವೋ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ರಿಂಗಮಾಣೌ ಬಿಜರ್ಹತು ರಿಂಗಮಾಣೌ ಬಿಜರ್ಹತು ಕಾಲೇನ ಬ್ರಜತಾಲ್ಪೇನ ಗೋಕುಲೆ ರಾಮಕೇಶವೌ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ರಿಂಗಮಾಣೌ ಬಿಜಹ್ರತು
ರಿಂಗಮಾಣೌ
और कालेना समय के बजता बीतने पर अल्पेना अल्प अवधि गोकुले गोकुल में राम केशव बलराम तथा कृष्ण जानुभ्याम घुटनों के बल सपाणिभ्याम और हाथों के सहारे रिंगमाणौ रेंगते हुए बिजहरस्तु खेल रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज गोकुल में आंगन में रेंगने लगे। इस तरह बालकपन के खेल का आनंद उठाने लगे। तात्पर्य, एक ब्राह्मण भक्त कहता है, श्रुतिम परे स्मृतिय परे भारत भजंत भोभीता अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्मा। भले ही अन्य लोग भवसागर से डरकर वेदों पुराणों तथा महाभारत की पूजा करें, किंतु मैं नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में परब्रह्म रेंगते हैं। महाभागवत को कैवल्य अर्थात भगवान ब्रह्म ज्योति में समा जाना नरक के समान लगता है, नरकाय थे। किंतु यहाँ पर मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। जब तक कोई कृष्ण लीला के विशेष रूप से कृष्ण की बाल लीला के विचार में मग्न रहता है, जैसा कि महाराज परीक्षित चाह रहे थे, तब तक वह वास्तविक कैवल्य में लीन रहता है। इसलिए व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वताम सम्मिताम। व्यास देव ने नारद मुनि के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें कि कोई भी इस ग्रंथ का लाभ जिसे कोई भी ग्रंथ का लाभ उठा सके, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। श्रुति अपरे स्मृति तरे भारत अन्य भजंत भवभीता अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक से पहले हम लोगों ने श्लोक संख्या 19 तक नामकरण के विषय में सुना। कृष्ण जब 100 दिन के हो गए थे तो वसुदेव जी को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब पुत्रों का नामकरण होना चाहिए, क्योंकि बलराम जी भी ब्रज में थे और कृष्ण भी दोनों ब्रज में थे। तो उन्होंने गर्गाचार्य से सलाह लिया। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। संज्ञा सलाह किए वसुदेव जी गर्गाचार्य से, क्योंकि गर्गाचार्य क्षत्रियों के कुल गुरु हैं और सांडल्य मुनि जो थे वे नंद बाबा यानी वैश्यों के कुल गुरु थे। तो गर्गाचार्य मोस्टली मथुरा में निवास करते थे और सांडल्य मुनि ब्रज में निवास करते थे। सांडल्य मुनि की पत्नी का नाम था पूर्णमासी और उनके पुत्र थे जिनका नाम था मधुमंगल, जो कृष्ण के बड़े अच्छे मित्र थे। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य से समझा सलाह कर करके और उनको अब भेजे ब्रज में, गोकुल में। कृष्ण छोटे थे, 3 महीने के थे, लेकिन बहुत सी लीलाएं हो चुकी थी तब तक से। पुतना वध, शक्रासुर, तृणावर्त, साथ साथ वे गोष्ठी में रहते थे गाय और बछड़ों के बीच में। और कृष्ण बछड़ों को दौड़ते हुए देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। बछड़े छोटे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। तलासरी जो गया था देखा है, कहाँ गया हमारा हनुमान, हाँ ये निकाल दो अभी, तर देखा चेहरा दिखाई पड़े, अच्छा ठीक है क्वारंटाइन में अभी। तो हमारा ये पवन पुत्र प्रभु को तो एक बछड़ा गोद ले लिया, इतने बछड़े अच्छे थे हैं। और ये तो गाय में सो जाते थे गायों के साथ में, तो बछड़े गाय बड़े बछड़े बड़े अच्छे लगते हैं जब दौड़ते हैं, गाय भी लेकिन बछड़े स्पेशली। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वे लोग निष्काम होते हैं, निर्दोष होते हैं, निर्विकार होते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे उन बछड़ों को खेलते हुए दौड़ते हुए देख करके। वास्तव में जो व्यक्ति निष्काम होता है, निर्दोष होता है, निर्विकार होकर नाता है, उन लोगों को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों को भी ऐसे ही होना चाहिए, निष्काम, कोई कामना नहीं, भक्ति में कोई कामना नहीं, निर्दोष, सब प्रकार के वायस, एटलीस्ट 4 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं इनसे वंचित, निर्विकार, अहंता और ममता दोनों को छोड़ करके। यही शांति का तरीका है। विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरत निष्पृह निर्ममो निरहंकारम सहमी शांतिम अधिगच्छति। शांति को वही प्राप्त करता है जिनमें एक गुण है। तो ये बछड़े लोग ऐसे थे, तो भगवान बड़े प्रसन्न थे उन लोगों को देख करके। और भगवान बुलाते भी थे बछड़ों को और बछड़े आ भी जाते थे। एक दिन तलासरी में ऐसे ही बैठा था और गौशाला में वो दरवाजा लगाया गया था, ऐसे बैठा था, एक बछड़ा आकर के मेरा सिखा खींचने लगा पीछे से है? फिर मैं ऐसे किया तो उनको चुमा देने लगा इधर। तो लोग निर्विशेष निराह का सॉरी निर्विकार हैं, निर्दोष हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो भगवान ऐसे ही बुलाते थे, बछड़े चले आते थे और भगवान उनको पकड़ते थे। तो बछड़े हम्मा जोर से बुला अपने माँ को बुलाते थे तो डर करके भाग जाते थे, और तब कृष्ण भी भयभीत हो जाते थे और कृष्ण रोने लगते थे, फिर मैया उसको मनाती थी। एनीवे ये सब कथाएं चलती है। गर्गाचार्य जी अब आ गए हैं, तो उस समय नंद बाबा गर्गाचार्य से नामकरण का प्रस्ताव रखे। गर्गाचार्य तो चाहते थे कृष्ण के नामकरण को करना, लेकिन वे थे चूंकि क्षत्रिय के गुरु, क्षत्रियों के कुल गुरु थे, इसलिए वो बीच में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन जब गर्गाचार्य जी आ ही गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रज में, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, तब नंद बाबा ने सोचा कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि गर्गाचार्य आए हुए हैं
और मेरे बच्चों का कृष्ण और बलराम का नामकरण कर दें। बलराम तो ऐसे ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, तो कोई बात नहीं, साथ साथ कृष्ण का भी हो जाएगा। देखिए यह एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार जो है वह नामकरण संस्कार है। संस्कार बहुत जरूरी है। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोगों का भी जन्म हुआ है, एक जन्म तो माता पिता से और एक जन्म गुरु से, तो हम लोगों का भी जन्म हुआ है इस कान में, तो हम लोगों को भी संस्कार की प्राप्ति बहुत जरूरी है। भक्त प्रोग्राम की ट्रेनिंग है वो और कुछ नहीं बल्कि ये संस्कार दिया जाता है, और ये संस्कार रहेगा तो जीवन पर्यंत यह काम करेगा। कहा जाता है कि पुत्र के उत्पत्ति से ही मात्र कोई सुखी नहीं हो सकता है, पुत्र के जन्म लेने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। यदि पुत्र लायक है तो बाप मां को सुख देगा, केवल जो सतपुत्र है वही सुख देगा, लेकिन यदि नालायक हो गया बेटा तब तो बाप मां को त्रास देगा। और ये लायकता और नालायकता डिपेंड करता है संस्कार पर, जैसा संस्कार होगा वैसा ही वह बच्चा होगा। संस्कार प्रारंभ होता है मां के गर्भ से ही, गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। तो जब अच्छे संस्कार आए तब अच्छे संतान होते हैं। हम लोग संस्कार की जरूरत क्या पड़ती है, 84 लाख जोनियों में उन्हें भटकते 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 मनुष्य जोनि में आए। जो 84 लाख में जो मानव भटकने के बाद मानव शरीर प्राप्त किए हैं, तो मानव शरीर जो है एक स्पेशल शरीर है, इसको संस्कार की जरूरत है। पशुओं को संस्कार की जरूरत नहीं है, 83 लाख जोनियों को संस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन 80 लाख जोनियों को संस्कार की जरूरत, 4 लाख जोनी जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं तो उनको ही संस्कार की जरूरत पड़ती है। यदि किसी बालक का जन्म हो, साधु महात्मा का उस पर दृष्टि पड़ जाए, साधु महात्मा के संसर्ग में वो आ जाए बालक, तो उसको साधु महात्मा का संस्कार प्राप्त हो जाता है। तो जो जिसका संग करेगा उसका संस्कार उसे प्राप्त हो जाएगा। नामकरण संस्कार बड़ा ही एप्रोप्रिएट संस्कार है। नाम बहुत काम करता है, जैसे अजामिल कुछ भी हो अपने बेटे का संस्कार कराया था, ब्राह्मण परिवार का था, तो वह नामकरण कराया था और उस नामकरण संस्कार के अनुसार उसने उसका नाम नारायण रखा था। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वह संस्कार काम आया बाद में। ये अजामिल मृत्यु को प्राप्त कर रहा था तो उस समय नारायण का स्मरण किया और हम लोग जानते हैं क्या हुआ। तो एनीवे नंद बाबा बहुत रिक्वेस्ट किए तो गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल सुबह का समय था, गौवें सब चरने के लिए चरे गई थी, तो कहे कि और कोई नहीं होना चाहिए, बात का पता नहीं चलना चाहिए, सुबह सुबह का बात था, कहे केवल रोहिणी, जसोदा, दोनों बालक और आप 5 लोग रहेंगे और मैं संस्कार करूंगा। उसका वर्णन आप लोगों ने सुना कि जब ये प्रारंभ हुआ तो किस प्रकार से सब जो पद्धति थी अपनाई गई। क्या सौभाग्य है गर्गाचार्य का कि जिन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया, भगवान को नाम दिया। पता नहीं वो फोटो इसमें है कि नहीं, वो नामकरण संस्कार का फोटो भी है, हाँ यहाँ पर है। ये भागवतम से बीबीटी वाले निकाल दिए हैं, पता नहीं क्या, पुराने भागवतम में है, पुराने भागवतम में है। एनीवे, गर्गाचार्य का कितना सौभाग्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को लेकर के अपने जंघे पर स्थापित किए और उनका नामकरण किए इत्यादि इत्यादि। तो श्रीपाद जी गोस्वामी गोपाल चंपू में इसका विशद वर्णन किए हैं नामकरण संस्कार का। अब जब नामकरण, कृष्ण का नामकरण संस्कार हो गया, बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया, तब यशोदा मैया बीच में ही पूछ ली, भगवान के अनंत गुणों का वर्णन गर्गाचार्य कर रहे थे, तब माँ थी, माँ का हृदय अलग ही होता है, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो हमारे बेटे के सब अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कोई खराब गुण तो नहीं है ना, पहले जो खराब होगा वही आप बतला दीजिए। तो गर्गाचार्य विचार करके कहे कि देखिए आपका जो बेटा है, नौ ग्रहों में से इसका आठ ग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन एक ग्रह में इसमें राहु नीचे बैठा हुआ है। तो राहु और केतु का नाम सुनते हैं, शनि ग्रह हो, राहु केतु, नाम सुनते हैं लोग घबरा जाते हैं। तो मैया भी घबरा गई। तो आचार्य ने कहा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बात ऐसी है कि जिस पुरुष के जन्माक्षर के सप्तम स्थान के नीचे यदि राहु होता है तो वह अनेक पत्नियों का पति होने वाला होता है, तो यही गड़बड़ है, अदरवाइज सब ठीक है। अब तक तो एक ही पत्नियां थी ना, नंद बाबा की एक पत्नियां थी, एक ही पत्नियां थी, अनेक पत्नियों का, तो स्वाभाविक तो वही हुआ जो गर्गाचार्य कहे उतना ही हुआ, 16108 पत्नियां हुई कृष्ण की। तो फिर मैया कहती है कि और कुछ तो गड़बड़ी नहीं है ना, तो गर्गाचार्य कहते हैं और मैं कितना कहूँ, आपका पुत्र कोई सामान्य बेटा नहीं है, कोई समान बच्चा नहीं है, तस्मात नंद आत्मजोयम ते नारायण समो गुण श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्य समाहित। तो ये बात श्रीपादजी गोस्वामी गोपाल चंपू में बतलाए हैं एज इट इज। तब अब नंद बाबा को एड्रेस करके, यशोदा मैया ये पूछ रही है, नंद बाबा को एड्रेस कर कह रहे हैं कृष्ण के विषय में कि आपका बेटा कैसा है, तस्मान ये अंतिम गुण का वर्णन किए हैं, अन्य गुणों का वर्णन करते 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 अब अंतिम बात बतलाए कि कौन है। तो तस्मात नंद आत्मजो अयम, आत्मजो अयम का अयम मतलब यह, आत्मजो मतलब आपके दिल का टुकड़ा। जय श्री श्री राधारास बिहारी की जय। आत्मजो अयम मतलब दिल का टुकड़ा, एक तो यह अर्थ होता है, और आत्मजो अयम जो सबके दिल का टुकड़ा है, सबका आत्मा है यानी परमात्मा, वो सबका जो आत्मा है, अयम यह बालक कोई समान बालक नहीं है। तो मान पुत्र तो है कौन जब सबके दिल का टुकड़ा है, सबके दिल में निवास करता है, तो मेरे दिल का टुकड़ा तो है कौन, कहते हैं अयम यह बालक। फिर ते नारायण समो गुणों, इस बालक में साक्षात नारायण के समान गुण हैं, नारायण के समान गुण है, एक है। ये नहीं कहते हैं कि साक्षात नारायण है, यह बालक साक्षात नारायण है, नारायण के समान गुण मतलब नारायण नहीं है, यही ना। साक्षात हरित्वेन का मतलब हरि नहीं है, हरि का गुण है। तो नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण है, यानी नारायण नहीं है, कंपेरिजन किया गया है, नारायण के समान है। तो बात सही है, कृष्ण जो हैं वे गोलोक निवासी हैं, गोलोक धामनी निज धामनी, और वैकुंठ जो है वह नारायण का धाम है, लेकिन गुण बताया गया है उनके समान है। श्रियः कृत्यानुभावेन गोपायस्य समाहित, तो इस प्रकार से गुण और ऐश्वर्य में ये ठीक उसी प्रकार से है, इसलिए कहते हैं गोपाय मतलब सावधानी के साथ में इसका आप पालन करें। अब श्रीपाद जी गोस्वामी नारायण समो गुण का वर्णन किए हैं, कहते हैं नारायणेन सम श्री कृष्ण, नारायण के समान श्री कृष्ण है एक बात, दूसरा नारायण सम जेन श्री कृष्णेन इति, नारायण में जो गुण है वो कृष्ण से आया हुआ है इति। अब यदि देखा जाए कि यह नारायण के समान है, इसका मतलब क्या है कि नारायण बड़े हैं और उनके यह समान है, यही बात हुआ ना, नारायण के समान जब तुलना किया जाए, छोटे से तुलना नहीं बड़े से, हाँ कोई गलती करता है तो बच्चा के समान है, जो कोई गलती करता है तो बच्चा के समान है, कोई अच्छा काम करता है तो बड़े लोगों से तुलना की जाती है, तो यहाँ पर बड़े लोगों से तुलना की जाए, नारायण सम तो नारायण के समान गुण है, यानी नारायण इनसे श्रेष्ठ हैं, यह बात ए श्लोक के अनुसार दिखा जाए। तो त्रिपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि नारायण सम जेन श्री कृष्ण न इति, नारायण सम ये जो नारायण है वो कृष्ण के समान है, यानी कृष्ण श्रेष्ठ हैं। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए तो गर्गाचार्य ने बतला दिया कि नारायण के समान से नारायण श्रेष्ठ हैं इनसे, लेकिन थोड़ा देखा जाए प्रमाण के रूप में, जी गोस्वामी प्रमाण दिए हैं कैसे कृष्ण नारायण से श्रेष्ठ हैं। नारायण चतुर्भुज रूप में है और कृष्ण द्विभुज रूप में, नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं और कृष्ण मुरली धारण करते हैं, नारायण शंख बजाते हैं और कृष्ण मुरली बजाते हैं, नारायण असुरों का संहार अस्त्र शस्त्र से करते हैं और कृष्ण बड़े प्रेम से ऑपरेशन कर देते हैं, वो प्रेम से करते हैं। नारायण में 60 गुण हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं, वेणु माधुरी रस माधुरी लीला माधुरी और रूप माधुरी, ये चार जो है वह नारायण से श्रेष्ठ है। दूसरी बात जी गोस्वामी प्रमाणित कर बतलाते हैं कि नारायण से कृष्ण श्रेष्ठ हैं। अब थोड़ा लीला परक बातें देखी जाए, जैसा कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, क्या कोई बांसुरी बजा सकता है? नारायण को आप लोगों ने कभी बांसुरी बजाते देखा है? बांसुरी कौन बजाता है जो चैन से रहता है, जिसे कोई टेंशन नहीं है, कहते हैं बड़ा तो आजकल चैन का बांसुरी बजा रहा है, शांति से है बिल्कुल, जो चैन से वो बांसुरी बजा सकता है। जैसा कृष्ण लीला करते हैं वैसा कोई लीला नहीं कर सकता है, गोपियों के सामने कृष्ण छाछ के लिए चुल्ली भर छाछ के लिए नाच रहे थे, हैं छछिया भरी छाछ पर नाच नचाई, गोपियां नचा रही थी जैसे कह रही थी कृष्ण वैसे नाच रहे थे छाछ के लिए। क्या आप लोगों ने नारायण को भी नाचते हुए देखा है? हैं, कभी नाचते हैं नारायण? नहीं नाचते हैं। कृष्ण गोपियां जब जाती थी मक्खन लेकर के या दही लेकर के, तो कृष्ण पीछे से आकर के साड़ी खींच लेते थे। कभी आप लोगों ने देखा है नारायण को साड़ी खींचते हुए? नारायण साड़ी खींच सकते हैं? नहीं। नारायण चाहे कोई भी देवता पर स्त्रियों का स्पर्श करने से संकोच करता है, कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। डर जाते हैं ऐसा करेंगे तो हमारा कोई पूजा नहीं करेगा। पर स्त्री से सब घबराते हैं लेकिन कृष्ण कभी नहीं घबराते हैं, सब उनके ही है ना, तो घबराने की क्या बात है, कभी घबराते नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सी छोटी छोटी लीलाएं हैं। मैं पहले भी कथाओं में बता चुका हूं कि कैसे एक बार एक गोपी थी और वो मटके में मक्खन लेकर के जा रही थी और कृष्ण पीछे से आए, उसका साड़ी खींच लिए और कहे कि माखन दो। तो दही और माखन ले जा रही थी, दो तो नहीं दे रही थी। कृष्ण को उसने कुछ लीला कर नचाने के लिए प्रयास किया, कृष्ण नाचे सब कुछ कर लिए फिर भी नहीं दे रही थी, तो कृष्ण को गुस्सा आ गया, उठाए पत्थर दे मारे। जब उसका मटकी टूट गया, पूरा चारों तरफ दही आ गया पूरे शरीर पर उसका, तो कृष्ण को भय हो गया, चले भाग। और भाग करके जा करके मैया से कहते हैं कि मैया एक गोपीन है, एक गोपी है, लगता है कि वो डाइन है, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैया मैं देखो भाग करके उससे आ रहा हूँ, अब जल्दी दरवाजा बंद करो कहीं यहाँ भी ना चली आए। और कुछ देर के बाद वो गोपी आ गई तो कृष्ण अपना हाथ मुँह छिपाते हुए कहते हैं देखो मैया आ गई, वही है, यही गोपी है। तो इस प्रकार से कृष्ण विभिन्न प्रकार का लीला ब्रज में करते थे। वो खैर वो अलग कथा है, तो उस कथा के आगे मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग यही जो श्लोक है इसके ऊपर मैं नारायण समा वाला सोचा कि थोड़ा बात कर लूँ और उसके बाद में यहाँ पर अब नामकरण संस्कार हो गया है। नामकरण संस्कार के बाद में अब यह श्लोक आता है। यहाँ पर गर्गाचार्य चले गए नामकरण संस्कार करके त्रिशुको वाच इति आत्मानं समादृश्य गर्गे च स्वगृहं गते। अब गर्गाचार्य आदेश दिए या बतलाए उनको नंद बाबा को, गोपायस्व समाहित, इस बालक को आप सावधानी के साथ में इसका रक्षा कीजिएगा, सतर्क रह करके, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उपद्रव होने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाला है, तो सावधानी से इसका पालन कीजिएगा। सम आदिश्य सम्यक रूप से आदेश दे करके गर्गे च स्वगृहम गते। अब गर्गाचार्य वहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान किए। अब नंद बाबा, नंद प्रमुदितो मैंने, अब नंद बाबा विचार करने लगे, यू नो अपने सौभाग्य का विचार कर रहे हैं। पूर्णम आशीषाम, वो अपने पूर्ण सौभाग्य का सोच रहे हैं अपने मन में। मैंने अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि हमारा पुत्र नारायण के समान बेटा है। उन्हें क्या पता था कि नारायण के समान का मतलब क्या होता है, अब तो पता बाद में चलेगा ना, लेकिन किसी बड़े से तुलना किया जाए तो बाप माँ बड़े खुश हैं मेरा बेटा का ऐसा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से और गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया तो यह हो गया। तो यहाँ तक तो ये 100 दिन वाला कथा। अब जो आज का श्लोक है वह 9 महीने बाद का कथा है, यानी अब कृष्ण 1 साल के हो गए हैं। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं, कालेन इति प्राचीन काले नामकरण करणस्य सततम् प्रवंतन आहे निर्णयतः त्रिणावर्तवधस्य वार्षिकत्वात् अस्य वर्षाभ्यंतरे च संभवात्। ये संभवत वर्षांतरे यानी एक साल के बाद का ये लीला है, इसीलिए यहाँ पर कालेन इति कहा गया है। पिछला चैप्टर कहते हैं, ऐश्वर्य मिश्रिया कृष्णस्य प्रोच्य बालकस्य माधुरीम केवलामेवता प्राह नित्य अभाव्यम उपासकै। अब तक से भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, अब आज के बाद में भगवान माधुर्य लीला प्रकट करने वाले हैं। एक साल के अब हो गए हैं तो माधुर्य लीला अब भगवान प्रकट करने वाले हैं। तो इस श्लोक से बहुत कुछ बातें आती है, एक तो कि भगवान अब आज के बाद में माधुर्य इतना और जितना हुआ अब तक से ऐश्वर्य का था। 6 दिन का बच्चा इतने विशाल काय असुर को मार देना, पुतना को मार देना कोई आसान कार्य नहीं, भगवान का ऐश्वर्य था, ईश्वर शक्ति ने मारा। वैसे ही शक्टासुर का, वैसे ही त्रिणावर्त का, ये 3 लोग तो गए काम से। तो ये भगवान का ईश्वर शक्ति प्राप्त होकर के किया था कार्य, और अब लीला शक्ति जो है वह अब प्रवेश की है। लीला शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति ये दोनों ब्रज में रहती हैं। कभी कभी लीला शक्ति, प्रायः ब्रज में लीला शक्ति ही की प्रधानता है, ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। जब मैया कृष्ण को या इसी अध्याय में आगे जब मैया को शंका हो गया कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है, कृष्ण ने मिट्टी खाया है, जब ही मैया को शंका हुआ कि ऐश्वर्य शक्ति वहां पर प्रकट हुई, और मैया ने क्या देखा, पूरे विश्व ब्रह्मांड को देखा। अब जब मैया बांधना चाहती थी कृष्ण को तो रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ जाता था, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रहा था लीला शक्ति में और ऐश्वर्य शक्ति में। लीला शक्ति के द्वारा भगवान को मैया बांधना चाहती थी और ईश्वर शक्ति उस रस्सी में प्रवेश कर गई थी कि कैसे आप बांध सकती हो, जो सबके बंधन को मुक्त करने वाले हैं उनको आप कैसे बांध सकती हो, ये संभव नहीं है। भगवान भी बहुत देर तक देखे, भगवान आनंद लिए कि ये 2 शक्तियां कैसे आपस में सुमधुर भाव से, मीठे भाव से लड़ाई कर रही हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य लीला शक्ति और ऐश्वर्यमय शक्ति दोनों लड़ाई कर रही हैं। और मैया अब हट कर ली कि मैं बांध कर ही रहूंगी, तो मैया का प्रयास था कि मैं बांधूं, और भगवान चाहते थे माधुर्य लीला करना ब्रज में, कर रहे थे माधुर्य लीला कर रहे थे, तो लीला शक्ति की प्रधानता की बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने ऐश्वर्यमयी शक्ति को कहा कि देखो अभी तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, गोकुल में तुमको रहने की आवश्यकता नहीं है, रहना चाहो रहो, लेकिन तुम प्रभाव मत दिखाओ, तुम्हें जो दिखाना है द्वारका में दिखाना है, यहाँ पर जो भी करना है वो लीला शक्ति ही करेगी। और जब भगवान ने ऐसा कहा तब बैक ऑफ की ऐश्वर्य शक्ति, और तब लीला शक्ति के द्वारा भगवान बांधे गए। कृपया वहां शब्द आया हुआ है, कृपया भगवान कृपा किए, भगवान की कृपा शक्ति या लीला शक्ति के द्वारा भगवान बांधे गए। तो यह श्लोक है कालेन, मतलब एक साल के बाद भगवान के जन्मदिवस के बाद में, जन्माष्टमी के बाद अभी। तो वहां पर कृष्ण अब लीला करना चाहते थे, तो पहले तो घर के अंदर ही चलते थे, और यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है ब्रजता अल्पेन गोकुले राम के सवई जानुभ्याम सहपाणिभ्याम। इसका मतलब समझ गया ना आप लोग, बकैया चलना है। जानुभ्याम यानी दोनों घुटना और दोनों हाथ का सहारा लेकर के भगवान चल रहे, बकैया चल रहे थे। अब तो भगवान जब बकैया चलना शुरू किए तो आई डोंट नो वल्लभाचार्य बहुत पहले में पढ़ा, कोई आचार्य बताए हैं कि भगवान बार बार बाहर निकलना चाहते थे, आंगन में आना चाहते थे, लेकिन भगवान आते थे लेकिन नंद बाबा के घर के चौकट जो था बहुत ऊंचा था। ब्रजहरि प्रभु, हम लोगों को यहाँ चौकट लगाना चाहिए। पहले मंदिरों में चौकट हुआ करता था, आज भी साउथ इंडिया के मंदिरों में जाओ चाहे पुराने मंदिरों में जाओ तो मार्बल के बड़े बड़े चौकट लगे हुए हैं। वस्तु के अनुसार भी सब प्रकार से, जब हम वृंदावन में थे तो वृंदावन में चौकट लगवा है, वृंदावन मंदिर में आप देखेंगे, कानपुर में चौकट है दरवाजे पर, यहाँ पर मार्बल का, चाहे बाहर के दरवाजे पर चौकट हन से लक्ष्मी जी बाहर नहीं जाती, अंदर आती है। तो एक काम का चीज़ है, पहले कहा जाता था कि स्त्री का यदि विवाह हो जाए तो घर आए तो घर से बाहर चौकट तब लांघेंगी जब उसका मृत्यु के बाद उसका शरीर ही चौकट लांग कर जाएगा। चौकट का बहुत महत्व है, पूजा होता है चौकट का। एनी वे तो नंद बाबा के महल में भी चौकट था, और महल था तो चौकट थोड़ा बड़ा था, लोग लकड़ी का छोटा लगाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं मार्बल का लगाते हैं, सोने चांदी का भी लगाते हैं। आप नाथ द्वारा इत्यादि जाओ तो देखोगे चांदी में मढ़ा हुआ वो चौकट है, तो अलग अलग। तो कृष्ण आते थे मक्खन ले करके और चौकट पर बैठ करके ऐसे बैठते थे और एक हाथ से मक्खन लिए थे, तो मानो वो नल कुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के बेटे थे वहाँ पर थे, वहाँ थे उनके आंगन में, और ये देखते थे कृष्ण निरंतर नल कुबर और मणिग्रीव को, और वे लोग भी कृष्ण को देखा करते थे। तो यह लीला जो है यह बड़ी माधुर्यमय लीला है। यहाँ पर दसवें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि अब यशोदा मैया कृष्ण को बांध कर करके अपने घर के अन्य कार्यों में लग गई, तब भगवान कृष्णस्तु गृहकृतेषु व्याघ्रयामातिर प्रभु अद्राक्षिदः अर्जुनो पूर्व गुह्यकौ धनमात्मजौ पुराणारसापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकुबर मणिग्रीवा मणिग्रीवो इति ख्यातो श्रियान्वतौ। तो मैया कृष्ण को बांध कर करके कृष्णस्तु गृहकृतेषु व्यग्रायम मातरिम प्रभु, मैया घर के अन्य कार्यों में फंस गई लग गई, और इधर कृष्ण अद्राक्षिदः अर्जुनो भगवान बंधे हुए हैं वहां से नल कुबर और मणिग्रीव को देख रहे हैं। ये कौन है? गुह्य कौ धन आत्मजौ, ये लोग कुबेर के पुत्र हैं जो पूर्व जन्म में देवता थे, ये लोग कुबेर के पुत्र हैं, और याद कर रहे हैं भगवान कि इन लोगों को हमारे प्रिय भक्त नारद ने श्राप दिया था, और श्राप देते समय कहे थे कि तुम लोगों का उद्धार होगा वासुदेव सानिध्यम, जब तुम लोग वासुदेव का सानिध्य प्राप्त करोगे तब तुम लोगों का उद्धार होगा। तो मानो भगवान मक्खन ले लेकर के और आते थे, क्योंकि उन लोगों पर नारद जी का अनुग्रह प्राप्त था, कृपा हुआ था, एक तो बात यह था। दूसरा बात, यह नल कुबर और मणिग्रीव बहुत सेवा किए थे ब्रज में, नंद बाबा के आंगन में थे। प्रजन बाबा इन लोगों को वहां आंगन में उखड़वा करके ला करके लगवाए, क्योंकि उनके कुल गुरु ने बताया कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, इन लोगों को ला करके सांडल्य मुनि के कहने पर ला करके वहां पर लगाए थे। तो कृष्ण बार बार जा करके उन दोनों वृक्षों को देखा करते थे। तो नंद बाबा के आंगन को बहुत देखते थे कृष्ण। अब तक से बेचारे घर में छोटे जगह में खेलते थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि शक्ति थी उनको बाहर जाने के लिए, लेकिन चौकट था तो बेचारे जा नहीं पाते थे, वहीं पर थे। अब जो ये आज का जो श्लोक है, काले न ब्रजता अल्पे न गोकुले राम केशव, अब घर में थे, अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, यानी बकैयां चल रहे थे। तो बकैयां भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जब बच्चे चलते हैं तो केवल हाथ और घुटना ही चलता है, और कभी कभी बच्चे ये हाथ और घुटने पर खड़ा भी हो जाते हैं। देखा आप लोग, हाथ घुटने पर खड़ा, क्या कभी कभी घुटने पर भी खड़ा हो जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से अब कृष्ण बलराम बड़े हो गए थे, तो ये लोग अब जा रहे हैं। जानुभ्यास माणिव रिंग माणो विजह ऋतु, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से खेला खेल रहे थे। अब आंगन में आ रहे थे, आंगन में आना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब आंगन का लीला प्रारंभ होगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में नंद बाबा के आंगन का गुणानुवाद किए हैं। वो आंगन कितना सौभाग्यशाली है, जहां पर देवता लोग आया करते थे। भगवान के आने से पहले भी नलकुबर और मणिग्रीव जब अर्जुन के वृक्ष के रूप में थे, तो नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ, लेकिन मेरी कृपा से तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी। तो उनकी स्मृति थी, और कुबेर भी अपने दूतों को भेजा करते, जाओ हमारे बेटे लोग ठीक है ना, थोड़ा देख लो, नारद जी के श्राप से तो पेड़ बन चुके हैं, किसी की जरूरत तो नहीं है, कुछ जरूरत है दे देना जाकर के। तो कुबेर के विभिन्न सेवक लोग आया करते थे, और ये लोग आपस में वार्ता करते थे, और स्त्रियां आकर के इन दोनों वृक्षों का पूजा करती थी। किसी के घर में शादी था तो वृक्ष से मांगती थी और वृक्ष व्यवस्था करते था। किसी का शादी लड़के का नहीं हो रहा, लड़के शादी नहीं हो रहा, शादी हो गया, जो जो चाहिए था ब्रजवासियों को, जो मांगते थे, ये नलकुबर और मणिग्रीव सब व्यवस्था कर। आखिर ट्रेजरर के बच्चे थे, कुबेर के बेटे थे, जो जो मांगते थे ब्रजवासी लोग, भगवान इन लोगों के ऋण ही हो गए थे कि तुम लोगों ने ब्रजवासियों का सेवा किया है। जो वैष्णव का सेवा करता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। और भी कुछ न कर पाए, केवल वैष्णव का सेवा भी करे, प्रचार कार्य में सहयोग करे, भले वो हरे कृष्ण जप न करता, वो तो करेगा ही, संग रहेगा तो, लेकिन यदि सेवा भी करेगा तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं, क्योंकि तावकों का वो सेवा कर रहा है। तो ब्रजवासियों का ये दोनों सेवा कर रहे थे, तो ये दोनों भगवान के बड़े प्रिय हो गए थे, देवता तो थे ही। तो कोई भी स्थली हो तो ऐसा स्थली धर्म क्षेत्र कहलाता है, पवित्र स्थली कहलाता है, धर्म का वो स्थान था। नंद बाबा जब भी पंचायती करते थे तो उन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ करके पंचायत करते थे। पंचायत आप लोग जानते हो ना, ग्राम पंचायत, पंच परमेश्वर वाला। वैसे ही जितनी गौवें थी, बछड़े थे, बछड़े भी उसके इर्द गिर्द खेलते थे। क्या सौभाग्य था नलकुबर और मणिग्रीव का, ये था नारद जी का अनुग्रह। श्राप तो नारद जी दिए कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम नंग धड़ंग हो तो वृक्ष बन जाओ और तुम्हारी स्मृति बनी रहे, लेकिन यह श्राप श्राप नहीं था बल्कि वरदान था, जिनसे ये लोग दर्शन कर सकें कृष्ण का, ब्रजवासियों का सेवा कर सकें। तो स्वाभाविक है वो स्थली धर्म स्थली है। तो नंद बाबा का जो आंगन था वो कोई समान आंगन नहीं है, वो धर्म स्थली है। इसी बात को प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं तात्पर्य में कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय के बीच में जो वार्ता हुई है उसको लेकर गए। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो वे रूप गोस्वामी उनसे मिले थे, और जब महाप्रभु प्रयागराज रह रहे थे तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोग आकर के मिलते थे, और ब्राह्मण लोग उनको भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करते थे। तो एक समय की बात है, वल्लभाचार्य उस समय प्रयाग के दूसरे साइड पूर्वी छोर पर यमुना जी के उस किनारे एक गांव है जिसका नाम है अड़ैल ग्राम, तो वहां पर वल्लभाचार्य निवास करते थे अपने परिवार के साथ में। तो जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो वे समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है, और उनको उन्होंने आमंत्रित किया था अपने घर पर खाने के लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को नौका में ले गए थे। वो बड़ी सुंदर कथा है कि कैसे जब नौका में ले जा रहे थे तो यमुना जी को देख करके कृष्ण को स्मृति आई और वो झांप लगा कूद पड़े यमुना जी में। फिर किसी प्रकार से उनको लाया गया और नाचते होते हुए जा रहे थे। एनीवे वल्लभाचार्य के घर गए, स्नान इत्यादि किए, कलेवर किए, उसके बाद विश्राम कर रहे थे और वल्लभाचार्य उनका पाद संवाहन कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को आदेश दिया कि आप जाकर के प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाप्रभु विश्राम भी नहीं कर पाते थे, एक आदमी वहां पर आए, हे न काले आईला रघुपति उपाध्याय तिरहुते पंडित बड़ वैष्णव महाशय। उस समय तिरहुत का बिहार का एक ब्राह्मण आए। प्रभुपाद जी कहते हैं तिरहुत जो है, तिरहुतिया भी लोग कहते हैं, तिरहुत जो है वो तीन डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरंगा, ये चार डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ एक डिवीजन है जिसे तिरहुत डिवीजन कहा जाता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बिहार में करीब कितने डिवीजन है, 20-25 डिवीजन तो होंगे, तो एक डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीजन था जिस वहां से आए थे ये तिरहुतिया ब्राह्मण थे। आसीते हो कैला प्रभु चरण बंदन, कृष्णमती रहु बले प्रभु र बचन। तो आकर के तिरहुति ब्राह्मण रघुपति उपाध्याय भगवान चैतन्य महाप्रभु को सत्सांग दंडवत प्रणाम किए, और चैतन्य महाप्रभु को उनको कहे कि आपकी आपका मन सदैव कृष्ण में लगा रहे। सुनि आनंदित हैला उपाध्याय मान, प्रभु तारे कही ल कह कृष्णेण व्रणन। रघुपति उपाध्याय जब सुने महाप्रभु के मुख से कि आपका मन सदैव कृष्ण में लगा रहे, तो रघुपति उपाध्याय बड़े प्रसन्न हुए। आशीर्वाद था, ऐसे ही आशीर्वाद देना चाहिए। यदि कोई प्रणाम करे हम लोगों को तो लोग कहते हैं चिरंजीव भव। अरे चिरंजीव भव क्या पेड़ बनोगे, सुखी रहो, ये सब दीर्घायु भव, विभिन्न प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वैष्णवों को आशीर्वाद देना चाहिए कृष्णेर मतिरस्तु, तुम्हारा मन कृष्ण में निरंतर लगा रहे, और जब कृष्ण में लगा रहेगा तो दीर्घायु भी रहोगे, सुखी भी रहोगे, सब कुछ प्राप्त होगा। एन केन प्रकारेण मनो कृष्ण निवेशयेत, किसी प्रकार से मन कृष्ण में लगा रहे। तो हम लोग जब भी कोई प्रणाम करता है तो यही आशीर्वाद देना चाहिए कि आपका मति सदैव कृष्ण में लगा रहे। तो बहुत प्रसन्न हुआ वही रघुपति उपाध्याय, और महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है, ब्रजनंदन है। तो महाप्रभु ने कहा कि आप कृष्ण के विषय में कुछ वार्ता कीजिए। महाप्रभु हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या हाल चाल है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। सीधे कृष्ण के विषय में। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िल सुनि महाप्रभु महा प्रेमावय सहिल। तो रघुपति उपाध्याय कुछ श्लोक लिखे थे और उन श्लोकों का वे वर्णन करने लगे। तो यह सुन करके महाप्रभु बड़े ही प्रेमावेश हो गए हैं, प्रेम के आवेश में आवेशित होकर के हो गए, मन प्रफुल्लित हो गए महाप्रभु। तब कहे कि पढ़िए पढ़िए। तब रघुपति उपाध्याय पहला श्लोक पढ़ते हैं, श्रुतिम तरे श्रुतिम परे स्मृति तरे भारत भजन्ति भवभीता अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्मा। कहते हैं श्रुतिम अपरे, कुछ लोग श्रुति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, श्रुति पढ़ते हैं, स्मृति इतरे, और कुछ लोग जो हैं स्मृति शास्त्र का, यानी श्रुति वेद पुराण, स्मृति भागवत इत्यादि अन्य इतरे, भारत अन्य भजन्ति भवभीता, और कुछ लोग भय से होकर के ही महाभारत का अध्ययन करते हैं। महाभारत भी वेद है। बहुत ऐसे मूर्ख लोग हैं कहते हैं अपने घर में महाभारत मत रखना झगड़ा हो जाएगा है? कहते हैं महाभारत का फोटो मत रखना झगड़ा हो गया। मूर्ख लोग पता नहीं कहां से सुन लिए। प्रभुपाद जी बड़े कंडेम किए ऐसे लोगों को, कहे कि महाभारत एक वेद है, महाभारत का अंश है भगवत गीता, भागवतम में कहा गया है स इतिहास पुराणम च पंचम वेद च उच्यते। इतिहास पुराण जो महाभारत है वो पांचवा वेद है। तो कहते हैं कुछ लोग डर के चलते महाभारत का अध्ययन करते हैं, भारत अन्य भजन्ति भवभीता, भय के चलते। कहते जहां तक मेरा सवाल है, अहम इह नंदम वंदे यस्या लिंग परम ब्रह्मा, अरे मैं तो नंद बाबा को प्रणाम करता हूं जिनके आंगन में पर ब्रह्म भगवान लीला किए। यस्या लिंग परम ब्रह्म, जिसके आंगन में परम ब्रह्म भगवान खेल किए, उन आंगन को मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ जिनके आंगन में। तो ये आंगन कोई सामान्य चीज नहीं है। पर ब्रह्म जहां पर आनंद लेते हैं। उसके बाद आगे मांगा, आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिल रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिल चतुर्मा प्रभु। कुछ और आगे कहिए, आगे बताइए, कुछ और आगे बताइए। तो रघुपति उपाध्याय कहते मैं क्या बताऊं, पता नहीं कहूं भी कि न। महाप्रभु नहीं कहो कहो बताइए क्या बात है। कहते कम प्रति कथयुसिमि से संप्रति को आप्रति प्रतीति माया तू गोपति तनया कुंजे गोपवटु विबिटे ब्रह्मा। कहते कम प्रति कथयुतु मिसे, मैं किनके साथ जाकर के यह बात कहूं जो मैं कहना चाहता हूं। करे हमारे साथ कह दीजिए क्या बात है। कहते यदि मैं कहूंगा भी संप्रति वा को वा प्रतीति मतया तू, क्या यदि मैं कहूंगा तो कोई भी विश्वास करेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा नहीं कहो क्या बात है, अगर क्या बात कहना चाहते हो तो क्या बात कहूं। अरे जो परब्रह्म नंद बाबा के आंगन में खेलते थे वही परब्रह्म मैंने देखा। गोपति तनया कुंजे, गोपति मतलब सूरज, सूरज की पुत्री यानी जमुना जी, गोपति तनया उन कुंजे जमुना के किनारे कुंजों में गोप बटु बिटे ब्रह्मान, मैं देखा वहां पर कि ये जो परब्रह्म हैं जो नंद बाबा के आंगन में खेलते थे वे गोपियों को ढूंढ रहे थे, बिटे यानी हंट कर रहे थे। हंट का हिंदी क्या होगा, ढूंढ रहे थे, यानी रासलीला के समय का बात है। तो कौन विश्वास करेगा ब्रह्म से, कोई ऐसा विश्वास ये नहीं कर सकता है। तब इतना जब कहे प्रभु कहे कहते हो पढ़ कृष्ण लीला प्रेमावेश प्रभु देह मन अवैला, तब महाप्रभु ने कहा कि और कुछ पढ़िए और कृष्ण लीला के विषय में बताइए। और कृष्ण प्रेम को देख करके अब ये उपाध्याय जो थे वो समझ गए कि ये कोई मनुष्य नहीं है। प्रेम देखे उपाध्याय रहल चमत्कार, मनुष्य नहीं हो कृष्ण करिल निर्धार। उसने निर्णय किया कि ये कोई समान मनुष्य चेतन महाप्रभु नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि उनके ही विषय में बात हो रहा था, उनके ही विषय में बता रहा था कि पर ब्रह्म यही है, भगवान चेतन महाप्रभु पर ब्रह्म है जो कि नंद बाबा के आंगन में खेले थे। तो कृष्ण अब खेलना प्रारंभ कर दिए। अब कैसे खेलेंगे वो कथाएं, आंगन में कैसे कैसे खेल रहे हैं वो सब कथाएं अब कल से आप लोग सुनेंगे। तो श्लोक संख्या यहाँ से लेकर के श्लोक संख्या 31 तक विभिन्न प्रकार के जो लीलाएं भगवान की हैं आंगन में, थोड़ा बाहर जा करके गाय के बछड़ों को छोड़ देना, और बिन्नु गोपियों घर में जाना, मक्खन का हंडी तोड़ देना, या किसी घर मक्खन नहीं था यदि मह दी थी वो लोग या चला गया था तो उनके बच्चे को चिट्ठी काटना, और सब लीलाएं बहुत भगवान छोटे छोटे बाल लीलाएं भगवान ने किया है। और अंत में श्लोक संख्या 34 से प्रारंभ हो रहा है, वह है मृतका भक्षण लीला, भगवान मिट्टी भक्षण किए। और इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, किसी कोई प्रश्न है? यस सुंदर चेतन प्रभु।
हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ये जो संस्कार का बात आपने पहले किया था, तो ये संस्कार होते हैं तो वो एक मनुष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि उसका शुद्धिकरण हो और अच्छे। तो ये जो संस्कार है वो तो जैसे एक दिन का संस्कार होता है, तो उससे कितना शुद्धिकरण होता है हमको समझ नहीं आता है कि उसके पीछे क्या है जिससे वो इतना शुद्ध हो जाता है।
देखिए, वो यदि संस्कार करने वाला उचित व्यक्ति हो जैसे गर्गाचार्य थे, तो ये स्वाभाविक है कि संस्कार जो है वह बीज के रूप में डाला जाता है। जब बीज डाला जाएगा तो ओवरनाइट तो फ्रूट आएगा नहीं, कालांतर में। तो संस्कार जब डाल दिया गया, जब बीज डाल दिया गया है तो कालांतर में वह जरूर अंकुशित होगा, प्रोवाइडेड वह संस्कार एक शुद्ध प्रकार से किया जाए। यदि कंटामिनेटेड संस्कार हो तो कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो संस्कार हो, शुद्ध हो, जैसे दीक्षा संस्कार है तो शुद्धिपूर्वक, और अग्नि शुद्धता को प्रमाण देने आती हैं, तो वो तो बीज के रूप में डाला जाता है और वही फलीभूत होता है आगे चल कर करके। यस, विवाह संस्कार इत्यादि सब संस्कार है, मृत्यु संस्कार, संन्यास संस्कार, नामकरण संस्कार।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद अच्छे इतने अच्छे प्रवचन के लिए। तो एक प्रश्न था, संस्कार मैं समझना चाह रहा था क्या है, ये एक प्रोसेस है या फिर समझ लीजिए कोई रूल है जो कि हमको फॉलो करना है।
एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। जे संस्कार का क्या था, सम आकार इति संस्कार, सम का अर्थ होता है आकार, मतलब स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके स्वभाव को देखते हुए वह जो पद्धति है वो बतलाई गई है और उसके अनुसार वो बीज डाला जाता है। तो संस्कार से ही व्यक्ति अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। संस्कार होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो खराब होगा। तो शुद्धिकरण का एक पद्धति है, जैसा कि इन्होंने पूछा वैसा ही है, ये कोई रिचुअल नहीं है। आज लोग रिचुअल मान लेते हैं क्योंकि संस्कार करने वाला नहीं है, कराने वाला, तो रिचुअल हो गया, बस रिचुअल मात्र रह गया है। जैसे पहले, अभी से 20-25 साल पहले सही में ब्राह्मण लोग आकर के विवाह कराते थे। आजकल विवाह कराने के लिए प्रोफेशनल लोग हैं, आप देखे हो ऐसा, राधा कृष्ण रूप बताएंगे, वो प्रोफेशनल लोग आते हैं, लड़कियां खूब संवार करके आती है, क्योंकि आजकल की स्त्रियां शादी का गाना गा नहीं सकती है, तो वो लड़कियां वो गाना गाती है। ये सब ठेके वाले हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। पंडित होता है, पैंट सरपंग शराब पीता है, सिगरेट पीता है, यहाँ करके धोती कुर्ता तिलक ला करके शादी कराता है, है? तो ये रिचुअल मात्र का रह गया है। और वो कहता भी है कि सात फेरा लेने का उसका मतलब क्या होता है, पता नहीं वो करता है स्वयं कि नहीं करता है, तो बस रिचुअल रह गया, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है। संस्कार के लिए एक सुयोग्य ब्राह्मण होना चाहिए, तब उसका असर जरूर पड़ेगा। और संस्कार ये बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए, ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने जैसा बताया कि नंद महाराज वैश्य समुदाय से हैं, तो उनके गुरु हैं शांडिल्य मुनि और नंद महाराज उनके हैं गर्ग मुनि। तो पहला प्रश्न, दोनों कनेक्टेड है, कि 100 वर्ष के कृष्ण हुए तो वसुदेव जी ने उनको भेजा
गर्ग, 100 दिन के,
100 दिन के हुए तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा, पर उस दरमियान नंद महाराज उन्होंने उनका नामकरण क्यों नहीं किया शांडिल्य मुनि के द्वारा?
नंद महाराज इसलिए कि बलराम जी बड़े भाई हैं ना, तो बड़े भाई का शादी ना हो, छोटे का शादी हो सकता है, आजकल तो हो जाता है, पहले नहीं होता था। तो बड़े भाई का नामकरण छोटे कैसे हो सकता है? बलराम जी का नामकरण नहीं हुआ था ना, तो वसुदेव जी भेजे बलराम जी का नामकरण करने के लिए, और नंद बाबा कहे कि हमारे बच्चे का भी आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आप ही कर लीजिए। तो दोनों काम हो गया, दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो क्षत्रिय नामकरण हो गया।
नंद महाराज को ये ज्ञात उस समय नहीं था शायद कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्णा। दूसरा प्रश्न कि नंद महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके तो गुरु हैं शांडिल्य मुनि, तो वो उनका अधिकार है उनके पुत्र को नाम देने का।
पहले दक्षिणा का कंपटीशन नहीं था, ये दक्षिणा कंपटीशन से होता, अरे हमारा जजमान है आपने कैसे कर दिया। पहले शांडिल्य मुनि बड़े प्रसन्न थे, या गर्गाचार संस्कार किए। जैसे हम वैष्णव लोग हैं, यदि मान लो कि मैं कहीं गया हूँ, मेरा लेक्चर होने वाला था, और यदि गोपाल कृष्ण महाराज चाहे हमारे सीनियर जो वैष्णव आ गए वो लेक्चर दे दिए, तो क्या मैं कंपटीशन करूँ वहाँ पर? अरे हमारा तो तुमने ऐसे करेंगे, सम्मान संस्कार तो है ना कुछ, तो ठीक वैसे ही।
So, नंद महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे डिसाइड किए कि ठीक है वो शांडिल्य मुनि बुरा नहीं मानेंगे, लाइक हमारे अगर परिस्थिति,
क्योंकि पहले कल्चर था, द्वेष था ही नहीं, पहले कंपटीशन और द्वेष नहीं था। अरे आज से कुछ साल पहले तक नहीं था, मेरे चाचा जी कृष्णचरण दास इधर ही है ना, वो कितना बना करके मारे हैं, बचपन में बदमाश था, बहुत मार खाता था, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं बोले कि हमारे बेटे क्यों मारते हो, भले सब नहीं था, ये तो अभी सब हो गया। आप भले ही भाई हो, अपने भाई के बच्चे को मारते, तुम कौन होता हमारे बेटे को मारने वाला, बोलेंगे ना? भाई बोलेगा छोड़ो, उसकी पत्नी बोलती है तू कौन होता हमारे बेटे को मारने वाला। मेरी माँ कभी नहीं बोल पाई, ना तो मेरे पिताजी, इतना सम्मान और प्रेम था। जमाना बदल गया है, क्या करेंगे, आज के जमाने की आंख से देखो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमें इस्कॉन में आने के बाद पता चलता है कि कृष्ण से सब भगवान आए हैं, विष्णु वगैरह, लेकिन जो प्रीवियस जो तीन युग थे जैसे सती युग हो गया, द्वापर युग हो गया, इसमें नारायण के समान जैसे आपने बताया, तो इन्हें कृष्ण का ज्ञान मतलब उस समय नहीं था क्या कि कृष्ण है, राम है, तो सब नारायण के समान, नारायण के समान, मतलब नारायण को ही पूजनीय करते थे।
देखिए जैसे हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब युगों में है, ऐसा बात नहीं कि आज ही है, ये सब युगों में है, लेकिन उसका प्रभाव अभी है, कलयुग में ज़्यादा उसका प्रभाव है, हमेशा प्रभाव था लेकिन कलयुग में ज़्यादा, अन्य का प्रभाव उतना नहीं है। तब छोटे से काम चले जाता बड़े को लगाने की जरूरत क्या है, जब छोटे से काम चल जाता तो बड़े को लगाने की जरूरत क्या है, जब ओम नमो भगवते वासुदेव से हो जाएगा तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की जरूरत क्या है। लेकिन कलयुग कलौ दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कलयुग में बहुत दोष है, तो अन्य कोई मंत्र काम नहीं करेगा, इसलिए बड़ा मंत्र लाया गया, महामंत्र। तो नारायण से काम हो जाता है तो कृष्ण को रखने की जरूरत क्या है, उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा बात, उस समय द्वापर था, द्वापर में घर घर में शालिग्राम नारायण की ही पूजा होती थी, कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम मखई द्वापरे परिचर्यायाम, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी। तो उदाहरण देना है तो ऐसा उदाहरण, ए मतलब एपुल कहो, बच्चे एपुल देखे हैं तो समझ सकते हैं, और ए मतलब अल्फा स्टोर कहो तो क्या बच्चा समझेगा, तो जो समझ सकते हैं। तो समझाने का यह तरीका है, ऐसा बात नहीं था कि गर्गाचार्य जानते नहीं थे कि कृष्ण कौन है, वो जानते थे कि नारायण के भी बाप हैं, लेकिन जितना से काम चल जाए उतना ही, बल्कि यशोदा जब पूछी तो बता दिए कि कौन हो। और कोई प्रश्न? प्रचारकों को ही समझना, जितना जितना जरूरत उतना ही बोलो, ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, सिर के ऊपर से चला जाएगा, तो उतना ही कहना चाहिए जितना लोग समझ सके, तो नारायण से काम चल सकता था। इसलिए आचार्य ग्रहण वर्णन किए हैं नारायण समा का, जैसे जीव गोस्वामी वर्णन किए हैं।
प्रजा वो स्टार्टिंग में बछड़ों के बारे में बता रहे थे कि बछड़े कैसे निर्दोष और निर्विकार होते हैं, तो प्रभु जी उसी के बारे में प्रश्न था कि मतलब बचपन में ये क्वालिटी नेचुरल होती है, लेकिन उम्र के साथ कोई भी पशु यूनियो हो चाहे इंसान यूनियो हो वो चली जाती है, तो उसको मेंटेन रखना बड़ा कठिन होता है प्रभु जी, ये निर्दोष। तो
इसीलिए हम लोगों को भक्त बनने की जरूरत है, जो भक्त होता है वो बछड़े के समान हो जाता है, भात और भक्त दोनों एक समान होते हैं, भात समझते हो ना चावल, और भात को देखो उसको धान काट करके लाकर उसको उखल में कूटा जाता है, पानी गर्म कर करके उसमें खौला करके डाला जाता है तब भात बनता है। तो वैसे ही पहले भक्त प्रोग्राम की ट्रेनिंग होती है, बाथरूम सफाई करो, टॉयलेट सफाई करो, ये करो, वो करो, वो करो, तब भक्त बनते हैं, एक बाइक नहीं बनते, भक्त बनते हैं, समय लगता है, जैसे भात। और जो भक्त हो जाते हैं वो छोटे बालक के समान होते हैं। एक छोटा बालक है, अभी मैं 8 दिन तक कथा किया तलाश्री में दामोदर लीला के ऊपर, तो वहाँ पर बात हो रहा था कि प्रपन्न शब्द का बात था, प्रपन्न शब्द आया था, तो एक है शरणागत और एक है प्रपन्न। अर्जुन कहते हैं शिशस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, और अंतिम श्लोक में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो शरण में जाना, टोटली सरेंडर, और प्रपन्न होना, दोनों में क्या अंतर है इसी को मैं बता रहा था कि एक बच्चा है जो 12 साल का है और एक बच्चा है जो 4 महीने का है, दोनों बाप माँ के बच्चे हैं, लेकिन दोनों में से किस पर ज्यादा बाप माँ का स्नेह होगा, 4 महीने के बच्चे पर ना। तो जो भक्त होते हैं वो 4 महीने के बच्चे हैं, वो प्रपन्न हैं। कभी कभी लोग शरणागत होने के बाद भी मन में भावना, अरे मैंने ये छोड़ दिया, मैं छोड़कर भक्त बन गया, भक्त कहते हैं अरे हमारा तो इतना अच्छा नौकरी था, मैं छोड़कर भक्त बन गया, शरणागत हो गया है लेकिन स्मृति है, और प्रपन्न होने पर इरेज एवरीथिंग, कुछ भी ना होना चाहिए। तो हम लोगों को वास्तव में प्रपन्न होना चाहिए और हमेशा हम प्रपन्न रह सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो एज पर डिपेंड नहीं करती है। 100 साल का व्यक्ति भी छोटे बच्चे के समान व्यवहार, भक्त है ना, नम्र है बेचारा, कोई गाली देता तो भी चुप रहता है, हंस देता है। छोटे बच्चे को गाली तो हंसेगा, वो क्या करेगा, वही करेगा ना। तो जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, कोई गाली दो, कुछ हरिदास ठाकुर को 22 बार मारे, सुदर्शन चक्र आ रहा था, उन्होंने कहा को छोड़ दो कोई बात नहीं, चला जा रहा था। तो भक्त लोग नम्र होते हैं, वही उनका, और नम्रता जो है वो निर्दोषता, निर्विकारता, वो सब गुण होता है भक्तों में, चाहे कोई 5 साल को हो चाहे 100 साल का हो, और वही तो उन लोगों को भक्त बनाता है, वही तो उन लोगों को बच्चा बनाता है। अहंकार से कोई भक्त नहीं बन सकता है, माइट इज राइट, इससे कोई भक्त नहीं बन सकता है। जब तक से अहमता ममता रहेगा, यही 2 उंगली छोटी है, भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं, अहमता ममता रहेगा तो। जो सुधा मैया में अहमता ममता थी कि कृष्ण मेरा बेटा है, गोपियां कहीं मत बांधो, छोड़ दो, कृष्ण खाया भी नहीं है, तो नहीं मेरा बेटा, तुम लोग कौन, जाओ, ममता थी। और अहमता थी कि मैं बांध कर छोड़ूंगी, कृष्ण नहीं बांध पाई। तो अहमता ममता दो, कृष्ण हमारे बिल्कुल नहीं दिखे, लेकिन जिस दिन अहमता ममता छूट जाए कृष्ण बंधे जा सकते हैं। एनीवे, जो लोग तलाशरी गए हैं उनको तो, जो नहीं गए, अब कोरोना खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, उसका विदाई का समय आ गया है, तो आप लोग जाया करो, मैनेजमेंट ने अच्छा व्यवस्था किया है, 10 लोग जाओ, 1 हफ्ता सेवा करो, फिर आ जाओ, फिर 10 लोग जाओ, तो क्रम से सब लोगों को महाप्रसाद, गो माता का महाप्रसाद मिलेगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
ये तू अभी तक गया क्यों नहीं, बताओ हमको।
प्रभु जी अभी
पैसा के पीछे पड़ा हुआ है।
नहीं नहीं, नहीं
बोलो।
ये जितनी भी लीलाएं भगवान की, वो गाँव में जहाँ पे भगवान गाय चरा रहे हैं, फिर गोपियों की साड़ी खींच रहे हैं, और ऐसे जितनी भी लीलाएं सारे गाँव में की गई है, जो आजकल के बच्चे हैं वो मोस्टली शहर में रहते हैं, उन्होंने कभी गाय के साथ खेला नहीं है, तो क्या ये चीज बाधा बन सकती है भगवान की लीलाओं को समझने में या रिलिश करने में?
देखिए, भगवान के लीलाओं को हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, भगवान की जब कृपा होगी तभी हम समझ सकते हैं, और भगवान की कृपा तब होगी जब भक्तों की कृपा होगी। तो इसीलिए साधु संघ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अरे ये तो आजकल के बच्चे, ये विदेश के जो हिप्पी लोग थे वो कैसे समझ गए, और समझ ही नहीं गए, रियलाइज भी किए। तो ऐसा बात नहीं कि भगवान की लीला आज नहीं हो रही है, आज भी हो रही है, हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं, क्या है, श्री राधिका माधव जोर पारम माधुर्य लीला गुणरूप प्रतिक्षण अस्वादन लो लुपस्य, प्रतिक्षण है। तो नित्य निरंतर भगवान की लीला हो रही है, और इन लीलाओं का दिग्दर्शन कर सकते हैं हम लोग केवल और मात्र केवल साधु संघ से। साधु संग करेंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी, और भगवत कृपा प्राप्त होगी तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अर्जुन भगवान के सखा हैं, और भगवान ने कहा कि तो अपने इस आंख से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दूंगा, दिव्य आंख दूंगा। अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिया तो विश्वरूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान हमें जो चाहिए वो देते हैं, प्रोवाइडेड हम साधुओं का संगति करें तब। प्रजल्प और वैष्णव अपराध, दो चीज से बच करके हम साधु संग करें तो सब कुछ फटाफट रिवील होना शुरू हो जाएगा। यस राधा, नहीं लास्ट मैं बताऊंगा, आप क्वेश्चन कर लो, मुझे अपील करना है सही भक्तों से। तो बाल क्यों नहीं सेविंग कराया?
जैसे आपने अहमदाबाद से प्रभु जी आए थे, उन्होंने उधर कर्जा, उन्होंने भी वहाँ पर भी लेक्चर दिया, और वहाँ भक्त सुन रहे थे, वो मैं सब सुना वहाँ उधर का लेक्चर, और यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने उस श्लोक जो भागवतम से निकाला है उसके ऊपर जो लेक्चर दिए, उन्होंने कहा कि गाय और बछड़े को अलग रखना चाहिए,
अलग रखना चाहिए।
सुनिए अभी पूरा पूरा सुनिए, तो अलग रखना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, सॉरी अलग नहीं, एक साथ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय और बछड़े को एक साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त थे शाम के समय में, तो उन्होंने बहुत तर्क किया उनसे, कैसे कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि जब कृष्ण थे तो वहां पर भी गोकुल में भी बछड़े अलग थे, गाय अलग थी, और वो वाचन लग गया कि गाय दूध पिएगी, बछड़े इतने ज्यादा दूध पिएगा तो बीमार पड़ेंगे, ये करेंगे, बहुत सारा सवाल हुआ। तो उन्होंने ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बहुत सारा आधुनिक जो एग्जाम्पल दिया कि आजकल ऐसे करते हैं कि जो लोग सिर्फ बछड़ा दिखा के गाय का दूध निकाल के लेते हैं, ऐसे इसी प्रकार, इसलिए एक साथ रखना चाहिए। तो ये कहाँ तक है, वो कैसे उन्होंने बताया?
राधा कृष्ण प्रभु, मैं आपको साक्षात अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं आने से दो दिन पहले गया था महाराष्ट्र गोपालन समिति, विनोद गुप्ता वाला, सावधान वाला जो है, वहाँ गया था। मुझे तो देख करके रुलाई आ गई, ये बछड़े बिल्कुल दुबले पतरे, हड्डी दिखाई पड़ रही है और पेट बड़ा बड़ा हो गया है। देखो, स्वस्थ बछड़े का पहचान क्या है कि देखने में ब्यूटीफुल लगेंगे और उनका जो बाल है ना, वो मखमल के समान, चाहे गाय हो चाहे बछड़ा, मखमल के समान दिखाई पड़े। अब आप कितने लोग तलाशरी गए थे, हाथ उठाओ तो। कहे ये हमारे गाय चरा रहे थे, पूछे दोनों गाय चरा रहे थे, कैसे बछड़े हैं बताओ, तुम लोग दिखाओ, माइक दो उसको, अभी ये तुरंत ताजा ताजा होकर गया है।
हरे कृष्ण प्रभु, सो अडोरेबल एंड सो ब्यूटीफुल,
दूर से बोलो, दूर से बोलो, हिंदी में बोलो।
बहुत देखने बहुत प्रिय थे और बहुत स्वस्थ थे और प्लीजिंग थे सब।
हम लोग अब उसको शुरू कर दिए हैं, बछड़ों को गाय के साथ छोड़ते हैं, 3 महीना तक बछड़ों को गाय के साथ। तो मुझे भी ऐसा भ्रम था कि ज्यादा पियेंगे तो पैखाना पतला होगा, ये होगा होगा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि गाय जो है वो माँ है, हमारी ही माँ नहीं, अपने बछड़े की ही माँ है। जब बछड़ों को ज्यादा दूध हो जाएगा तो लात मार देती है, हम देखते हैं लात मार दी है। नरहरी शहर वाला हो गया है, गांव नहीं रह गया, अभी वो शहरी हो गया है, गांव का नहीं रह चुका है। भाई मैं तो गाय चराया हूं, मैं देखा हूं, और यहां पर हम लोग स्वयं देख करके आए। 2-3 चीज हमको भी इस तरह से भ्रम था, एक तो यह था, दूसरा भ्रम था कि ये लोग गाय को दूहते थे पैर बांध करके। हमने पैर बांधना छोड़ दिया, कहा मत बांधो। एक दिन थोड़ा कुछ कि तुम लोग में कोई दुहा गाय को यहां पर, तो दुहा ना तू, गाय तू बांध कर दुआ बिना बांधे। अब बिना बांधे दूते हैं, पहले गाय को बांधते थे, विश्वनाम प्रभु ने बोला हम गाय को छोड़ दिया, अब गाय को हम नहीं बांधते हैं। कल दुहना होता है तो थोड़ा बांधते हैं कि ताकि इधर उधर ना होने का बछड़े के लिए, अदरवाइज हम बांधते नहीं हैं। हम तो वो भी छोड़ने वाले धीरे धीरे, तो हम लोग फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं सब चीज को। तो गाय, अब ये क्या हुआ कि हमारे गाय दूध देती है, बछड़े का पेट तो छोटा है, तो गाय के स्तन में दूध होता है तो फटने लगता है, तो हमने कहा निकालो उसको, तो हम निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं। उतना ही नहीं प्रभु, गाय में ममता चाहिए। यदि बछड़े को माँ देखे कि हमारा बच्चा खुश है तो माँ नेचुरली खुश होगी, और खुश होगी तो कुछ भी दे सकती है। ठीक वैसे ही जब गाय देखती है कि हमारे बछड़े दूध पी करके हिस्ट पुष्ट हैं, ये ग्वाले लोग जो हैं बदमाशी नहीं कर रहे, हमारे बछड़े का नहीं ले रहे हैं, तो दिल खोल कर दूध देती है, और नहीं तो दूध चुरा लेती है। जो लोग चलाक होते हैं, समझते थोड़ा बछड़ा देखा कर दूध निकालूंगा, वो दूध चुरा लेती है गाय। हाँ देखो, गाय जब भयभीत रहेगी तो सब कुछ चुराएगी। गाय को भय नहीं होना चाहिए। हम प्रैक्टिकली देख करके आए, वहां पर रह करके देखे हैं गायों को। उसको हम कई एक चीज है, एक जो ये था, उसके बाद भ्रम था कि अरे दूध पी जाएगी तो फिर सुबह दूध कहाँ निकलेगा, ऐसा बात नहीं है, इनफ दूध है। अरे और तो और उसका जो बेटा गोविंद है विष्णु नाम का, मैं कहा गोविंद जाओ तू गाय दूहो, कहा प्रभु जी मैं दूहने जाऊंगा ना तो गाय दूध कम देगी। मैं कहा क्यों, कहा कि जो व्यक्ति दूहता है उससे उसकी दोस्ती है, मुझे अनजान समझ करके दूध चुरा लेगी। लो उसका बच्चा भी वो जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। विष्णु ये संस्कृत का सब छोड़ो, चलो गाय का उधर सेवा करो। ये गाय का सेवा भी करो भगवान के धाम में जाएगा, संस्कृत कहीं नहीं ले जाएगा। और कोई प्रश्न किसी को, चलो सब लोग, हमने जो भक्त वहां होकर के आते हैं उनसे पूछो। एनीवे सो एवरीबॉडी आई इनकरेज एवरीबॉडी मस्ट विजिट तलासरी, भगवान कृपा से यह है, और गौओं का सेवा करो, गाय चराओ। मैं देखा ये तो कौन ये था कि वो था कौन पेड़ पर, तुम बैठा था पेड़ पर पड़ जाते हैं गाय चरती है उधर। पहले दो दिन परेशान की गाय जब गई थी शुरू शुरू में, लेकिन अब जैसे आगे चले पीछे पीछे वो चली जाती है। अपना कहाँ है, चला गया ओ क्या नाम गो गो था गो सोपोलम पद्मनाभ कहाँ है, चला गया क्या आश्रम में, सो रहे लगता है कुछ लोग, जाने वाला था तो पद्मनाभ आगे जाता है, सब गाय पीछे चली जाती है, पहचान गई। अभी एक नया लड़का है पीला कपड़ा लगा रहता है, चले जाते पीछे, और इधर भी घास उधर भी नहीं चरेगी, जहां वो खड़ा होगा वहीं चरेगी। मेनी थिंग टू लर्न, गायों से बहुत कुछ सीखने को। और सबसे सब आप पूछ लो अपना पवन पुत्र प्रभु से, क्या पवन पुत्र प्रभु आनंद था कि नहीं, तो यहां क्या कर रहे हो। हमने असली ब्रह्मचारी, आज ही मैं लेक्चर सुना था प्रभुपाद जी का ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी के जीवन का बता रहे थे, सातवां स्कंद का चल रहा है लेक्चर, कि ब्रह्मचारी का कैसे जीवन होना चाहिए, तलासरी में रियली ब्रह्मचारी जीवन। मैं तो अभी कह दिया हूँ भक्तों को, अब बहुत पेड़ हो गए हैं, आम के बहुत पेड़ हो गए, बड़े हो गए हैं। मैं कहा सब लोग अपना अपना पेड़ निछावर कर लो, चुन लो कि तुम्हारा पेड़ कौन है, और उसके नीचे ब्यूटीफुल चबूतरा बनाओ और भागवतम पढ़ो, नींद आए तो सो जाओ भी, क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष नहीं छोड़ता है, तो पढ़ो भागवतम। तो अरुण वगैरह थे अपना चुन रहे थे, तो सबको चुन लेना चाहिए अपना प्राण, जिसको भजन करना है जा करके भागवतम का अध्ययन करो पेड़ के नीचे बैठ करके, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा तो कोरोना वायरस भी नहीं होगा, पेड़ के नीचे बैठने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, शुद्ध। और मन करे तो तालाब में कूद जाना नहाने के लिए, बगल में तो ही है ना, तालाब के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।